अभी आज का हमारा जो टॉक शो है उसका सब्जेक्ट है चैलेंज द चैलेंजेस। हमने आगे सुना विक्ट्री के बारे में, उसमें हमने देखा बहुत सारी चैलेंजेस आती है। विक्ट्री पाने के लिए पहले ये चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ता है, तभी हम विजय प्राप्त करते हैं। तो ये जो चैलेंजेस आती है वो सिर्फ मेरे लाइफ में आती है ऐसा हमको कई बार लगता है, मुझे ही क्यों होता है ये क्वेश्चन बार बार होता है, मेरे साथ ही क्यों। पर सबको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों, सब सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। माना हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आती ही है। आजकल हम देखते हैं हमारे एम को प्राप्त करने में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो चीजें हमें रुकावटें पैदा करती है। कई बार हम सोचते हैं कि ये रास्ता सही है या गलत है, डिसीजन लेना कि कौन से रास्ते पे जाओ। और प्रेजेंट सिचुएशन में हम देखते हैं शॉर्टकट्स बहुत है, शॉर्टकट्स बहुत है, लेकिन शॉर्टकट्स को हम ले या ना ले ये भी एक सिचुएशन आती है। अगर हम शॉर्टकट्स लेते हैं तो उसमें हमें कुछ खोना भी पड़ता है। हमारी अंतरात्मा अंदर से हमें कह भी देती है, एक बार सुना भी देती है कि यह गलत है, फिर भी खुद को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ये सारी बातों को हम आज हमारे इन तीन जो महानुभाव है उनके एक्सपीरियंस के द्वारा क्लियर करेंगे, समझेंगे, उनके अनुभव हमें प्रेरणा देंगे, मोटिवेट करेंगे, है ना। वो कहते हैं कि अ स्मूथ सी नेवर मेक्स अ ग्रेट कैप्टन। अगर समुद्र में लहरें ही नहीं उठेगी तो जो उसको चलाने वाला नावी है वो कभी अच्छा कैप्टन बन ही नहीं पाएगा। तो लाइफ में भी ये सब अप्लाई होता है। अगर सीधी सादी लाइफ है, कुछ मुश्किल आ नहीं रही है, कुछ परेशानी ही नहीं हो रही है, खाया पिया आराम किया, तो फिर सच में क्या हम लाइफ जी रहे हैं? खुद को हमें ये सोचना है, पूछना है। तो मैं हमारे तीन महानुभाव जो अभी हमारे बीच में उपस्थित है उनको स्टेज पे इनवाइट करना चाह रहा हूं। हम इनवाइट करते हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार भ्राता ललित भाई जी, आप ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है उनके सेक्रेटरी है, साथ में राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट है उनके भी आप सेक्रेटरीज है। पूरे विश्व में जो ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र है उनमें जो अकाउंटिंग होता है, ऑडिट होता है, उनको पूरा वो आप लीड करके यहाँ मैनेज करते हैं। आप बाय प्रोफेशन सीए भी है और भारत तथा अन्य देशों में भी आपने युवाओं को प्रेरित किया हुआ है। हम वार्म वेलकम करते हैं आदरणीय भ्राता ललित भाई जी को। साथ साथ हमारे डॉक्टर राहुल जी है, आप एमवीएन यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, आप एचओडी है, और आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सोनिका बहन जी है, आप दिल्ली ओआरसी से आई है, आप प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स भी किया हुआ है और आप प्रोफेशनल ट्रेनर है, राजयोगा टीचर भी है। तो हम तीनों महानुभावों का जोरदार कल्तर ध्वनि से एक बार फिर से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत है तीनों महानुभाव। अपने आप में एक अनुभव की खान लेकर हमारे बीच में आए हैं। लाइफ में जो चैलेंजेस आती है, वैसे इनकी लाइफ में भी बहुत सारी चैलेंजेस आई होगी तभी यहाँ पहुंचे हैं। तो हम मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इनसे ही हम सुनना शुरू करते हैं। हम जो गेस्ट आए हैं तो गेस्ट का बहनों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप बेजी से इनका वेलकम करें, तिलक और बेजी से। हम तालियों से इनका स्वागत करते रहे, वेलकम करते रहे। स्वागत की कड़ी में साथ में मैं थोड़ा ब्रीफ आपको बता देता हूं। ललित भाई जी 1993 से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। अभी समर्पित रूप में यहां अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया, आप सीए हैं। साथ साथ आप हमारे जो ट्रस्ट है, दो ट्रस्ट, ब्रह्मा कुमारी और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, दोनों के सेक्रेटरी हैं और यूथ विंग की सबसे शुरुआत की सेवा से जो पदयात्राएं निकली है, साइकिल यात्रा निकली है, उनमें आपने अपनी सेवाएं दी हुई है। तो हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में हमारे बीच में सोनिका बहन है, आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोफेशनल है, आपने यूएन में भी जॉब किया हुआ है, इटली में, और प्रेजेंटली आप दिल्ली ओआरसी में राजयोगा टीचर एवं ट्रेनर के रूप में जो कंपनीज में ट्रेनिंग्स होती है उसमें आप सेवाएं देती है। आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है। साथ में डॉक्टर राहुल जी है, आप एमवीएन यूनिवर्सिटी में एचओडी है, लॉ कॉलेज में, स्कूल ऑफ लॉ में, तो आपका भी बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले शुरुआत हम आदरणीय भ्राता ललित भाई जी से करते हैं। आप युवा काल से ये संस्था से जुड़े हुए हैं। भ्राता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, युवा काल में बहुत सारी चैलेंजेस आपकी लाइफ में भी आई होगी और साथ में आप स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, तो देख पाते हैं कि मुझे कोई बड़ी पोस्ट पे जाना है या कुछ प्राप्त करना है तो मुझे मेरी वैल्यूज के साथ बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बहुत सारा हमने ये किया कि अगर मैं वैल्यूज को साथ में रहकर या स्पिरिचुअलिटी को साथ में रहकर ये करना चाहता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊं, बाकी सब आगे ना चले जाए। तो आपके मायने में क्या ये नजरिया सही है और आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आया हो जहां पे ये वैल्यूज या स्पिरिचुअलिटी आपको ऐसा लगा कि मुझे छोड़नी पड़ेगी लेकिन आप ऐसा कुछ डटे रहे, तो ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें और आपके व्यूज इस पे सुनाएं। आदरणीय भ्राता ललित भाई जी।
ओम शांति। आप सभी भी जरा रिपीट करना, ओम शांति, ओम शांति। अब तो ट्रैक थोड़ा बता दूं, ये तीन बार ओम शांति का, इस संस्था के चीफ अभी आदरणीय दादी जानकी जी हैं, जिनका फोटो आपने देखा होगा क्योंकि दादी जी अभी लंदन में सेवा पर उपस्थित हैं, 103 साल पूरे कर लिए हैं और अभी भी उनकी सेवाएं चालू है। तो खास कहती है तीन बार ओम शांति का अर्थ, हमारे पूरी स्पिरिचुअलिटी उसमें आ जाती है, जिस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आप यहां आए हो वही उसमें आ जाती है। पहला ओम शांति मैं कौन, जो आपको कल सवेरे के सेशन में बताया था। दूसरा ओम शांति मेरा कौन, जो आज सवेरे के सेशन में आपको बताया था। और तीसरा ओम शांति मुझे क्या करना है, जो अभी के सेशन में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि मुझे क्या करना है। हम जनक भाई को थैंक्स करते हैं जो हमें आपके साथ ये शेयरिंग करने का मौका दिया। जनक भाई भी सॉफ्टवेयर फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं और अपने युवा काल से बहुत वर्षों से इस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। जहां तक उन्होंने बताया कि लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ परिस्थितियां आती है और उस समय हमें अपने सिद्धांतों से मूल्यों से समझौता करना पड़ता है, तो क्या बिना समझौता किए भी हम टिक सकते हैं, बढ़ सकते हैं, खुश रह सकते हैं? मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं, खुश रह सकते हैं? तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हां, रह सकते हैं। और अगर हम समझौता करते हैं तो शायद नहीं रह सकते हैं। हम समझौता नहीं करते हैं मूल्यों के साथ और अपने मूल्यों पर दृढ़ रहते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम सफल भी होते हैं और खुश भी रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई एग्जाम्पल के रूप में बताएं, मैं जब इस इंस्टीट्यूशन में 21 वर्ष की एज में समर मन संस्था से जुड़ा, उससे पहले मुझे आध्यात्मिक जीवन में बहुत रुचि थी, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता था, नहीं हो रहा था, तो निश्चय किया कि सन्यासी बन जाऊंगा। माना उसके पहले भी ये जब आध्यात्मिक राह पे मैं बढ़ा तो उसमें महात्मा गांधी जी के जीवन कहानी का मुझ पर बहुत असर हुआ, वो मैंने पढ़ा। आप में से बहुत सो ने महात्मा गांधी जी की जीवन कहानी पढ़ी होगी, सत्य के प्रयोग। जब वो जीवन कहानी मैंने पढ़ी तो उसमें था एक साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार, साधारण बैकग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को हिला सकता है, भगा सकता है केवल मूल्यों के आधार पर। उसके पास कोई हथियार नहीं थे, मूल्यों के आधार पर वो कर सकता है। उसने मुझे बहुत प्रेरित किया कि इस जीवन में हम भी कुछ विशेष कर सकते हैं और उस विशेष करने के चाहत में जब आगे बढ़ा तो ये आध्यात्मिकता के राह पर आया कि अगर हम परमात्मा का साक्षात्कार कर लेवे तो ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा और उसके बाद ये हिम्मत आई इस जीवन में कि हम मूल्यों पर चलकर जीवन को कैसे सफल बनावे। पहले ये सोचते थे हम भी कि समझौता कर लेना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, समय के साथ बहना चाहिए, जैसा समय चलता है वैसे हम भी मुड़ जाएं, झुक जाएं और आगे बढ़ें। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी इसके साथ जुड़े तो पता चला कि स्वयं परमात्मा पिता, जैसा अभी चंद्रिका दीदी जी वहां हैव कैफे में बता रहे थे कि स्वयं परमात्मा पिता की हम संतान है। आज जब किसी का कोई रिलेटिव मिनिस्टर होता है तो भी उसको कितना एक नशा रहता है, मन में एक निश्चिंतता रहती है, तो हमको यह परिचय मिला हमारा पिता स्वयं परमात्मा है जो इस पूरी दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला हमारा पिता है, तो फिर घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। और उन्होंने हमें मंत्र दिया है कि सफलता तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है और वो जीवन में मूल्यों को अपनाते हुए ये सफलता प्राप्त करनी है। हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक बहुत छोटे से गांव में, जहां 2,500 की बस्ती है, 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाके चल के गांव में पहुंचना पड़ता है, खेती करते थे, उस बैकग्राउंड से यहां तक पहुंचे तो चैलेंजेस तो बहुत आई। और जैसा भाई ने परिचय में बताया, इस इंस्टीट्यूशन के और जो हमारी सहयोगी ट्रस्ट है उनका मिला के 6,000 यूनिट्स की अकाउंटिंग और ऑडिट होती है। 6,000 यूनिट्स का मतलब इतनी ब्रांचेज है इस संस्थाओं की जिनका अकाउंट्स रखा जाता है, ऑडिट होता है। और अकाउंट रखने वाले कोई बीकॉम, एमकॉम, सीए, एमबीए नहीं है, लेकिन जो हमारी बहनें 8वीं पढ़ी हुई, 10वीं पढ़ी हुई, 12वीं पढ़ी हुई, ग्रेजुएशन भी होगी लेकिन अकाउंटिंग का कोई अनुभव नहीं होगा, हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं तो उनको पता होगा कि अकाउंटिंग कोई इतना इजी नहीं होता है, और वो भी जीवन समर्पित किया स्पिरिचुअलिटी के लिए और अकाउंटिंग का काम भी उनके हाथ में आ गया कि उनको वो भी करना है। तो कितना बड़ा चैलेंज है ये कि इतने ब्रांचेस के अकाउंट्स रखवाना, ऑडिट करवाना, गवर्नमेंट में सबमिट करना, और जो गवर्नमेंट का एग्जेम्पशन मिला हुआ है टैक्स का वो मेंटेन रखना, ये इट्सेल्फ इज ए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन परमात्मा की शक्ति से और उन्होंने जो ज्ञान दिया ये राजयोग का, वो जीवन में प्रैक्टिकल अप्लाई किया, तो उसके आधार पर ये जो मैनेज करना होता है वो हम बहुत सहज रीति से कर पाते हैं। जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही सहज रीति से हो रहा है, वो सहज रीति से कर पाते हैं। और मूल्यों की जहां तक बात है, इतने गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाना पड़ता है। आप सब ने सुना है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज की आजकल क्या हालत है, भ्रष्टाचार किस हद तक है। लेकिन कलयुग है, यहां तो भ्रष्टाचार की परिभाषा भी बदल गई है। एक बार हमारे एक मित्र ने, मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अहमदाबाद में है, मैं अहमदाबाद में रहता था पहले, अभी 12 साल से तो यहां हेडक्वार्टर में हूं मैं। तो वहां जब मैं था प्रैक्टिस में, तो हमारे एक फ्रेंड ने कहा कि ललित भाई इनकम टैक्स में बहुत ईमानदार ऑफिसर आए हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, ईमानदार ऑफिसर आना इनकम टैक्स में, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो हमने कहा कि अच्छा है, चलो पैसे नहीं लेते हैं तो। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मैं एकदम सोचने लगा, मैंने कहा मतलब आप क्या कहना चाहते हो। मैंने पूछा पैसे नहीं लेते हैं, बोले नहीं ऐसी बात। तो उन्होंने कहा नहीं पैसे तो लेते हैं, लेकिन पैसे लेके काम कर देते हैं। माना ईमानदारी की परिभाषा ये हो गई है कि पैसे लेके काम करना ये ईमानदारी है। मतलब कलयुग का ये समय चल रहा है कि जहां मूल्यों की परिभाषाएं बदल गई है, ऐसी परिस्थिति में वो मूल्यनिष्ठ जीवन जीना वो यहां ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया भी जाता है, और परमात्मा से वो शक्ति भी मिलती है कि हम कर सकते हैं। और इतने गवर्नमेंट ऑफिसेज में हमको जाना होता है, इतना लॉज हमारे पर एप्लीकेबल है, वो सब हम करते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी हमें कुछ देना नहीं पड़ता है, सब कार्य बहुत सहज रीति से हो जाता है। इतना बड़ा संस्था, इतना बड़ा कारोबार, लेकिन बहुत सहज रीति से हो सकता है मूल्यों के आधार पर। और वो भी हमारा जीवन देखते हैं ऑफिसर्स भी, कि देखो इन्होंने अपना जीवन कैसा बनाया है, तो हमारा कार्य बहुत सहज रीति से वो कर देते हैं। ऐसे जीवन में अनेक एग्जाम्पल है कि जहां पर हमने मूल्यों से समझौता नहीं करते हुए मूल्यों पर अटल रहे, उससे हमारी एक साख बनी, और उस साख के हिसाब से, उस क्रेडिट के हिसाब से सारे कार्य जीवन के बहुत सहज हो गए। इसलिए जनक भाई हमारा तो ये कहना है, और हमारे युवा साथियों से भी हमारा ये कहना है कि अगर मूल्य हमारा आधार है, हमारे जीवन का आधार है, तो ये सफलता की गाड़ी हो सकता है कि थोड़ी धीरे चले, कभी ऊपर नीचे हो, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचाएगी इसको, ऐसा विश्वास है।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, आपने स्पष्ट किया वैल्यूज को छोड़े बिना भी हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, खुशी वाली लाइफ जी सकते हैं। हमने सुना है कई बार कि हमारी जो लाइफस्टाइल है और स्पिरिचुअलिटी, माना हमारी जो एक्चुअल लाइफ है और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग अलग पाथ है, ऐसा हम मानते हैं कि नॉर्मल लाइफ जीना और स्पिरिचुअल लाइफ जीना दोनों अलग रास्ते हैं। तो भाई साहब ने क्लियर बताया कि ऐसा नहीं है। देखो आप सीए की प्रैक्टिस भी करते हैं, वैल्यूज को साथ में धारण करते हुए, साथ में रखते हुए स्पिरिचुअल लाइफ भी जी रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। भाई साहब ने हमें ये क्लियर बता दिया। तो यही जो क्वेश्चन हमने सुना उसके कंटिन्यूअस में हम बहन जी से ये सुनना चाहेंगे, सोनिका बहन जी जो यूएन में भी आप काम कर चुकी है, माना बाहर के देश में आपने काम किया हुआ है, वहां पे भी हम देखते हैं कि यहां से वहां पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, यूएन में जॉब करना, वहां जॉब मिलना। तो आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आई होगी जब आपको यूएन में जॉब मिला, तो आप ऐसा आपका एक्सपीरियंस रियल लाइफ बताएं कि आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आई और आपने किस आधार पर उसको ओवरकम किया।
थैंक यू जनक भाई. और जैसे अभी ललित भाई ने सुनाया कि वैल्यू जो है हमारी साख बनाता है, जिससे हमारा काम सहज हो जाता है, थोड़ी धैर्यता की आवश्यकता होती है. तो मैं भी एग्री करती हूँ कम्प्लीटली ललित भाई से कि वैल्यूज जो है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्ञान से पहले और ज्ञान के बाद जो अनुभव किया, वो यही अनुभव किया कि वैल्यूज जो है वो हमारी धैर्यता, अगर हम रखते हैं तो वैल्यू हमारी वैल्यू बढ़ा देते हैं. और वो वैल्यू हमें खुद भी महसूस होती है अपनी कि मैं वैल्यूबल हूं, और दूसरे भी हमें वैल्यू देना शुरू कर देते हैं. तो ऐसा ही कुछ अनुभव हम शेयर करना चाहते हैं यूएन की जर्नी शॉर्ट में. हमारी ट्रेनिंग थी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ. इंजीनियरिंग करने के बाद हमने एज अ ट्रेनी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में थे सीनियर डायरेक्टर के साथ. तो हमारी ट्रेनिंग के दौरान सीनियर डायरेक्टर डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में एक अच्छे होल्ड रखते हैं, और जो ट्रेनीज है वो एक्सपेक्ट करते हैं अगर इनको हम थोड़ा अप्रोच करें तो ये हमारी जॉब लगा देंगे. तो ऐसे ही होता था हमारे साथ. जो हमारे सारे ट्रेनीज थे वो हमेशा उनको अप्रोच करते, सर थोड़ा सा प्लीज़ ट्राई करिए, प्लीज़ ट्राई करिए. और उस ग्रुप में आई वॉज द ओनली वन जिसने कभी अप्रोच नहीं किया. तो कुछ महीनों के बाद एक दिन हम किसी प्रोजेक्ट में उनके साथ बिजी थे, तो उन्होंने पूछा कि मैडम आप सीरियस नहीं है करियर के लिए? तो हमने कहा नहीं सर, हम सीरियस हैं. तो कहते हैं आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं, आपकी कुछ जॉब के लिए आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे, लगता है आप एम्बिशियस नहीं है. तो हमने कहा सर हम एम्बिशियस भी है और हम सीरियस भी है, एंड आई एम ट्राइंग इन सो मेनी कंपनीज और चल रहा है हमारा प्रोसेस. तो वो चुप हो गए. उस समय इनडायरेक्ट ये था कि आपने तो कभी अप्रोच ही नहीं किया, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है. अंदर से वैसे इन दिस पर्सन सीनियर डायरेक्टर एज ए ह्यूमन ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, और मैं उनको अभी तक बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. लेकिन मुझे अंदर से लगता है कि कोई पर्सन मेरे लिए क्यों करेगा फर्स्ट, और ये हार्डवर्क मेरा है वो मेरे लिए कंपनीज में क्यों अप्रोच करे? ही इज नॉट माई फादर. तो वो जो काम मुझे करना है वो मुझे ही करना है और अपनी रीति से करना है, और हम हार्डवर्क अपना कर रहे थे. पहला. दूसरा जो वैल्यूज हमने शुरू से उस समय से रखा हुआ था वो ये था कि आज नहीं तो कल मुझे तो विजय मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी. आई डोंट नो, लेकिन ये फीलिंग बहुत डीप थी. इस दौरान ऐसे कमेंट्स भी मिलते थे कि आजकल तो इंजीनियर जो है वो पीएन की जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जो है वो उनको जॉब्स नहीं मिल रही, इसलिए वो किसी हद तक भी क्लरिकल जॉब, पीएन की जॉब कर रहे हैं. आपको तो आप बहुत एम्बिशियस है लेकिन कुछ होने वाला नहीं है. नो मैटर व्हाट, अंदर यही होता था वन डे विल कम जब हमें अच्छी जॉब मिलेगी. ये थॉट कभी गया नहीं. तो इस दौरान ट्राई करते करते यूएन की अपॉर्चुनिटी किसी के द्वारा पता लगी. अगेन कोई जैक नहीं, कोई अप्रोच नहीं, और हमने इंटरव्यू दिया और हमारा, आई वॉज द ओनली गर्ल जिसका सिलेक्शन हुआ यूनाइटेड नेशंस में. और डायरेक्टली हमारा यूनाइटेड नेशन लॉजिस्टिक बेस जो इटली में है वहीं से डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ. पूरे पैनल ने जो था उन्होंने इंटरव्यू लिया, और सरप्राइजिंगली अ बिग सक्सेस. तो हमारा इंटरव्यू कॉल आ गया और उसमें सक्सेस मिली, और फाइनली आई गॉट द जॉब. और हम फ्लाई करने, हमने फ्लाई किया, और फिर हमने जो हमारे सीनियर डायरेक्टर थे उनको बताया कि ऐसे से हमारी जॉब लग गई. ही वॉज वेरी हैप्पी. हम यूएन में पहुंचे. कुछ महीनों के बाद उनका लेटर आता है, इफ यू कैन ट्राई दिस जॉब फॉर माई डॉटर. तो हमें उस समय भी ऐसा नहीं लगा क्यों उन्होंने ऐसे ट्राई किया, हमने तो कभी नहीं कहा उनको. लेकिन मुझे एक ऐसा लगा अंदर से, ये फील होता है कि इस जीवन के अंदर कब किसकी पोजीशन, कब किसका पड़ला भारी हो जाए वो आपको नहीं मालूम. लेकिन हमारा पड़ला बहुत जल्दी भारी हो गया. आई थिंक विद इन 2 ईयर्स जो जिसको जिनको अप्रोच हमने करना था वही 2 साल के बाद हमें अप्रोच वो कर रहे हैं कि क्या आप अपने यूएन में हमारी बेटी के लिए ट्राई कर सकते हैं. तो अगर हम अपने ऊपर निश्चय रखते हैं और उस परमात्मा पर विश्वास जो मेरा कभी भी डगमग नहीं हुआ, नो मैटर व्हाट। यूएन के दौरान भी बहुत चैलेंजेस आए, जब जॉब मिला उसके दौरान भी 6 महीने का बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन परमात्मा से विश्वास आज तक जीवन में कभी भी एक सेकंड के लिए भी डगमग नहीं हुआ। उसी का हमें लगता है ये परिणाम रहा कि जीवन में सफलता आज नहीं तो कल अवश्य मिलती ही है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सोनिका बहन ने हमें शॉर्ट में पर बहुत सुंदर मैसेज दिया। वैल्यूज को साथ में रखते हुए कॉन्फिडेंस और फेथ दोनों बताया, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस भी था और परमात्मा के ऊपर फेथ भी था। तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के हिसाब से, डिटर्मिनेशन के हिसाब से, हार्डवर्क के हिसाब से इन्होंने वो अच्छी पोस्ट खुद प्राप्त की। किसी को जैक लगाए बिना, किसी को अपीज किए बिना उनको वो प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही हमारे बीच में डॉक्टर राहुल जी हैं, आप भी एचओडी तक पहुंचे हैं, तो आपने भी ऐसे बहुत सारी सीढ़ी चढ़ी होंगी। तो हम आपसे भी ये सुनना चाहते हैं कि लाइफ में जब हम ऐसे आगे बढ़ रहे होते, कई बार हमने देखा है कि कंपटीशन बहुत है, आपको जो टॉप पोस्ट चाहिए वहां पे पहुंचने के लिए कंपटीशंस तो बहुत है। मैं भी आईटी फील्ड से हूं, कंपनीज में देखते हैं बॉस के साथ थोड़ा नजदीकी संबंध रखना, उसको खुश रखना, ये सारी चीजें कॉरपोरेट में बहुत होती है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया, आप ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए।
जनक भाई धन्यवाद। मैं राहुल वार्ष्णेय, मेरा 15 वर्ष का अनुभव है टीचिंग लाइन में। जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, वो आपकी कोर स्ट्रेंथ होती है। प्रेम, कमिटमेंट, किसी को डिग्रेड ना करना, किसी को अपने आप से कम तर ना समझना, ये वो चीजें हैं जो आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम टीचिंग मैंने स्टार्ट हुई थी, मैंने टीचिंग शुरू की थी 2004 में, और टिल येट नो डाउट नियर अबाउट 5000 स्टूडेंट्स हैं मेरे जो पास आउट हैं। तो उसमें बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो ये कहते थे, गुरुजी बाहर निकलो, देखते हैं आपको। क्योंकि सीधी सी बात है कि उनके मन के अगर बात नहीं करें हम, तो वो कहते हैं कि ये नहीं, आपने गलत किया है। तो मेरा एक ही चीज थी कि मैंने अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। जैसे प्रेम है, तो मैं प्रेम में कभी भी बंटवारा नहीं करता था कि ये बच्चा अच्छा है ये बुरा है, सबको एक समान रूप से मैं अपना प्रेम पूरा देता था और देता हूं। दूसरा, भेदभाव में कभी किसी के साथ नहीं करता था, ये अमीर है ये गरीब है, ये इस जाति का है उस जाति का, इस धर्म का है उस धर्म का है, चाहे मेरा कलीग हो या कुछ भी हो, चाहे वो मेरे से कम हो या ऊपर हो, तो उसी का ये नतीजा है। दूसरा, वचन, कमिटमेंट, अगर मैंने किसी से कुछ कहा है कि ये मुझे करना है तो वो मैंने उसको किया है, ऐसा नहीं है उसमें एक्सक्यूजेस पैदा किए। तो उसका नतीजा ये है कि उन मूल्यों की वजह से जितने भी ये स्टूडेंट्स मेरे टच में थे और जो पास आउट हुए हैं, आज भी दिल्ली एनसीआर में मोर देन 5000 स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे आज भी टच में है, इवन देन निकलने के बाद। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में एक बार बस किसी का भी काम हो जाए तो पलट के कभी नहीं देखता है। दूसरा, जैसे सर ने कहा, कंपटीशन है, थ्रोट कट कंपटीशन है। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो वो एक लेग पुलिंग है, एक पॉलिटिक्स है, तो नो डाउट। तो मैंने जब काम करना शुरू किया तो मेरी जो सैलरी थी ये 1000 रुपीज थी, और मैंने छोटे से लेवल से शुरुआत की, लेकिन मैंने कभी भी टाइम को टाइम नहीं देखा, 9 to 4 नहीं देखा। जितना भी काम आया, जितने भी समय आया, मैंने उसको पूरा किया, चाहे मुझे रात को बैठना पड़े उसमें। जितने भी चैलेंजेस थे मैंने सारे पूरे किए, और उसी का आज नतीजा है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझ पर ट्रस्ट किया और ये पोस्ट दी। और जितने भी मेरे कलीग्स होते हैं उनको भी मैं अपने से बढ़कर ही मानता हूं, और उनको वो उतना प्यार सम्मान देता हूं जितना कि वो चाहते हैं। तो बस यही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि मूल्य जो आपके वैल्यूज हैं उनको आप पकड़ के रखिए, वो आपको आगे तक लेके जाएंगे। थैंक यू।
सर ने बहुत शॉर्ट में लेकिन बहुत बड़ा मैसेज दिया, वैल्यूज के साथ आगे बढ़ेंगे, कभी थोड़ी टाइम के लिए लगेगा कि हम पीछे छूट गए लेकिन सफलता अवश्य प्राप्त होगी, हमारे चैलेंजेस के ऊपर हम अवश्य विजय प्राप्त कर सकेंगे। आप सबने सरजी बुबका का नाम सुना होगा। सरजी बुबका कौन है? जो पोल वॉल्टिंग करते हैं ना, 35 वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। कितने? 35 पोल वॉल्टिंग बना, जो जंप लगाते हैं पोल के साथ। खुद के रिकॉर्ड को उन्होंने इंप्रूव किया। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस तो आएंगी ही, तो ये चैलेंजेस को हम अगर अपॉर्चुनिटी समझे तो वो अपॉर्चुनिटी समझकर उसके ऊपर हम अवश्य विजय हासिल कर सकते हैं। अभी हम आपको आह्वान करते हैं कि आपने तीनों वक्ताओं को सुना, अगर आप में से कोई इनसे जो भी पूछना चाहते हैं चैलेंजेस के बारे में और ओवरकमिंग द चैलेंजेस किस कैसे, तो हम आपको भी वेलकम करते हैं, आप पूछ सकते हैं। हमने सुना है एक बहुत अच्छा वाक्य है, कहते हैं जो लहरों से टकराए उसे, जो लहरों से टकराए उसे चट्टान कहते हैं, जो लहरों से टकराए उसे चट्टान कहते हैं, और जो चट्टानों से टकराए उसे युवान कहते हैं, युवान कहते हैं। तो चैलेंजेस तो आने वाली है लेकिन उसका डटकर सामना करना, लेकिन साथ में वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी को रखना, तो हम अवश्य इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप में से किसी को अगर पूछना है, बाकी हम ऐसे कंटिन्यू करते हैं। है कोई? एनीबॉडी? ठीक है, आप सोच कर रखिए, तब तक हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम आदरणीय भ्राता ललित भाई जी से पूछना चाहते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि ये चैलेंजेस जो आती है तो ये चैलेंजेस एक्चुअल में क्या लिमिटेशंस के कारण आती है, मेरी कोई लिमिटेशंस है तभी मैं मुझे लगता है कि ये मेरे लिए चैलेंज है, या फिर मुझे लगता है कि ये मुझे ही मुश्किल लग रहा है, दूसरे लोग कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम समझे कैसे कि ये चैलेंजेस एक्चुअल में मेरी लाइफ से कैसे रिलेटेड है, उसको लिमिटेशंस के कारण या मेरी कमजोरी है मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको हम ओवरकम करने के लिए आपकी एक्सपर्ट कमेंट हमें आप दीजिए।
बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है जनक भाई ने। चैलेंज एक रिलेटिव वर्ड है, कोई एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। एक चीज जो एक के लिए चैलेंज हो सकती है दूसरे के लिए खेल होता है। कोई ये टी टेबल उठाना एक छोटे बच्चे के लिए चैलेंज है लेकिन हमारे लिए खेल हो सकता है, तो ये एक रिलेटिव वर्ड है। इसीलिए चैलेंज प्रायः हम उसी को मानते हैं कि जो हमारी कैपेसिटी से कुछ ज्यादा बड़ी सिचुएशन हो, तो वो हमारे लिए चैलेंज होता है, और उसको ओवरकम करना या उसको पास करना या उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज करना, ये हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि हम उस परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं। जब मैं स्कूल एग्जाम्स देता था तब परीक्षा मेरे लिए एक चैलेंज नहीं थी। बहुत से बच्चों के लिए परीक्षा चैलेंज होती है, लेकिन मेरे लिए परीक्षा एक अपॉर्चुनिटी थी। क्या अपॉर्चुनिटी थी? कि इसको पास करूंगा तो अगली क्लास में जाऊंगा, यह एक अवसर था मेरे लिए। तो हम हर बात को जीवन में प्रतिदिन कई बातें हमारे सामने आती है, तो अगर हमारा परसेप्शन पॉजिटिव नहीं है, हम बहुत सीमित दायरे में सोच रहे हैं, तो वो हमारे लिए चैलेंज बन जाता है। और जब कोई चीज चैलेंज के रूप में हमारे सामने होती है और हम थोड़ा घबरा जाते हैं, तब हमारे निर्णय करने की शक्ति जो है वो काम करना बंद कर देती है। इसलिए चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में चेंज करने के लिए ये राजयोग जो हम यहां पढ़ते हैं ये बहुत मदद करता है। ये क्या करता है कि हमको साक्षी बनना सिखाता है। साक्षी बनना माना, जैसे आप घर पर बैठ के टीवी देख रहे हैं, टीवी में कोई भी सीन चल रहा है, आपको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं उसको, एक साक्षी बन के, दर्शक बन के देख रहे हैं। तो हमारे सामने भी जो परिस्थितियां आती है, हम उसको एक बार साक्षी बन जाते हैं, दर्शक बन जाते हैं, तब हम उस परिस्थिति में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और उसको हम दूर से देखते हैं। और जब दूर से देखते हैं और हमारा योग परमात्मा के साथ लगता है, जो राजयोग में सिखाया जाता है, कल सवेरे के सेशन में आपको विशेष रूप से सिखाया जाएगा राजयोग का, तो जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं तब हमारी जो निर्णय शक्ति है और परखने की शक्ति पहले और फिर निर्णय शक्ति, ये शक्तियां हमारी काम करने लगती है और उस परिस्थिति को पॉजिटिव वे में लेकर अपॉर्चुनिटी में हम कैसे कन्वर्ट करें कि वही बातें हमारे लिए आगे बढ़ाने का माध्यम बन जाती है। यहां किसी पॉलिटिकल पार्टी से हम जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, क्योंकि मैं गुजरात में अहमदाबाद में रहा हूं, 2000 जब वो गुजरात में सीएम बने तब से मैं उनको नजदीक से देखता रहा हूं, सुनता रहा हूं। जीवन के उनके कितने ही पल ऐसे थे जो बहुत बड़े चैलेंजेज के रूप में थे, कि जैसे कैरियर कोई खत्म कर दे, ऐसे चैलेंजेज के रूप में थे, लेकिन उसी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी बना दिया। जो बहुत बार वो अपने शब्दों में भी कहते हैं कि कोई पत्थर फेंकते हैं तो उनको पुल बना के वो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा परसेप्शन हम चेंज करें। बहुत बार आपने सुना है आधा ग्लास पानी का भरा हुआ होता है, कोई उसको आधा खाली देखता है, कोई आधा भरा देखता है। बारिश में, अंधेरी रात में कोई खिड़की, चांदनी रात में कोई खिड़की से बाहर देखता है, कोई चांद को देखता है, कोई कीचड़ को देखता है। परसेप्शन है कि हम क्या देखना चाहते हैं। तो ये परसेप्शन इस राजयोग के द्वारा हम पॉजिटिव बना सकते हैं। जो मेरा बना है, मैं अपने अनुभव 26 वर्षों के अनुभव से कह सकता हूं कि इस राजयोग से इस लाइफ का परसेप्शन बहुत पॉजिटिव बना है और उसके कारण से जो भी चैलेंजेज आए हैं वो खुशी दी है, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है, आगे बढ़ाया है।
बहुत सुंदर। लेकिन क्या होता है ना कि हमारा जो फेथ सिस्टम है ना परमात्मा में, वो एडजस्टमेंट वाला है। कैसे माना, जब चैलेंजेस आती है ना तभी वो याद आता है, बाकी टाइम पे वो याद नहीं आता है ना। अभी तो मैं खुश हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी क्या जरूरत है। ऐसा होता, ऐसा करते हैं हम। जब मुश्किल आती है, एग्जाम आती है, तो हम मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, है ना, प्रसाद ले लेते हैं वहां से। तो ये क्या हमारा मायना सही है कि जब प्रॉब्लम आए तभी उसको याद किया जाए, बाकी टाइम पे हम खुश है तो क्या उनकी जरूरत है। ऐसा कर सकते हैं, सोनिका बहन आप हमें बताएं।
मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब टफ टाइम है तो शक्ति की ज्यादा आवश्यकता है। अभी का अनुभव तो बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन अज्ञान कालता में शायद ये गिफ्ट था कि अंधकार जब होता था तब लगता था कि कोई आपका नहीं है, सिर्फ वही आपका है। तो अंधकार के समय एक इमोशनल सपोर्ट जो चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक इमोशनल सपोर्ट तो उसी से ही मिल सकती है। उसको ही छोड़ दिया तो कहां से एनर्जी मिलेगी, कैसे आप क्रॉस करेंगे। क्योंकि जब डार्कनेस होती है तब आपको हाईएस्ट एनर्जी की जरूरत है, जब आपको सक्सेस मिल रही है तब उतनी शक्ति, इमोशनल स्ट्रेंथ की जरूरत उतनी नहीं है। लेकिन जब आप फेलियर है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपके जो टारगेट्स है वो अचीव नहीं हो रहे हैं, उस समय आपको उस विश्वास की, उस शक्ति की जरूरत है जो उस डार्कनेस से आपको क्रॉस कराए। और उस समय आपके अपने दूर हो जाते हैं और उस समय महसूस होता है कोई आपको उस एनर्जी से या उस निगाह से देख ही नहीं रहा है, तो कहां से आप ले। तो मुझे तो बचपन से ये शायद गिफ्ट है कि मुझे लगता है इस समय तो एक आप ही हो, और वो मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ सदा से रही है। और अब महसूस होता है कि वास्तव में अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल लव, उसके सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है। छोटा सा उदाहरण, यूएन में हमारा सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के बाद आई वॉज अबाउट टू फ्लाई। सब कुछ हो चुका है और अब आप एक हफ्ते में आप फ्लाई करने वाले हो, आपके रिलेटिव्स, उस समय की बात है, आई थिंक इट्स 15 ईयर्स बैक, 15 साल पहले आपको विदेश फ्लाई करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, 15 साल पहले इंजीनियर होना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस समय की बात है जब आपके सब रिलेटिव्स, आपके जो नेबर्स है वो आपको बड़ी ऊंची निगाह से देख रहे हैं, और फैमिली भी बड़े प्राउडली सबको अनाउंस करती है कि बस मेरी हमारी बेटी तो फ्लाई करने वाली है। तो वो समय ये आया और सब शॉपिंग हो गया, सब कुछ हो गया, और वहां से पता चलता है यूएन से होल्ड हो गया आपका वीजा, और यूएन ने ग्रीन सिग्नल अभी आपको नहीं दिया और रुक गए। अब अगर कोई हमें टाइम बता दे कितने समय के लिए रुक गए तो भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो वो रुकने का समय हमें नहीं बताया गया, और हमारा ग्रुप था जिसमें 4 बॉयज थे एंड आई वाज द गर्ल, तो वी वर 5। तो अब हमने वेट किया 1 वीक, मे बी एक सप्ताह के बाद ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। फिर कहा थोड़ा सा और समय, ओके 15 मोर डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, वी वर कीप ऑन वेटिंग। और सब जो थे ग्रुप में सब निराश, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। और उस समय सेकंड के लिए भी थॉट नहीं आ रहा कि ये अच्छा नहीं हुआ, दिस वाज माय स्टेट ऑफ माइंड। मुझे बहुत विश्वास था कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ये सिर्फ उसको मालूम है, और वो जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो हो रहा है कुछ अच्छे होने के लिए हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरी बहुत लिमिटेड साइट है, मेरा विजन बहुत लिमिटेड है, उसका विजन बेहद का है, उसको पता है पीछे क्या हो रहा है। ये मेरा ये जो अंदर से बहुत डीप ये रियलाइजेशन थी। और जैसे वो वीजा का कोई ड्यूरेशन होता है 6 मंथ्स, वो एक्सपायर होने को ही था। उससे पहले हमने कई जॉब ट्राई किया, गुड़गांव में हमारी जॉब लगी एंड आई यूज टू ट्रैवल फॉर 1 आवर, 1 or 2 आवर्स आना जाना, और वो जॉब यूएन के आगे तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन स्टिल आई वॉज हैप्पी, जॉब लग गया ठीक है, जो है बहुत अच्छा है, हम जॉब कर रहे थे। विद इन 15 डेज एक कॉल आता है हमको कि आप सोनिका कोहली हैं, हाँ जी, और कॉल आता है कि आपका सब कुछ रेडी है, आपको फ्लाई करना है। हमने कहा अब हम ट्रस्ट करें आप पर, तो कहते हैं हाँ मैडम, क्योंकि वो जो कंपनी है, जो कंपनी आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट उससे हट के अब TCIL के पास आ गया है, इसलिए ये सारा प्रोसेस में डिले हुआ है, एंड वी वर लुकिंग फॉर यू, हमें आपका नंबर ही नहीं मिल रहा था, और अब आपका नंबर मिल गया है, प्लीज कम एंड मीट मी। GM का फोन आया डायरेक्ट, कहा आप कल आइए और आप अपनी सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करिए, ASAP, एज सुन एज पॉसिबल आप फ्लाई करिए, आपका वेट किया जा रहा है। उस 5 में से सिर्फ और सिर्फ हमें ये कॉल आई, और सिर्फ हमें ही ग्रीन सिग्नल मिला, बाकी सबका ड्रॉप हो गया। आज वो फेस था, लेकिन आज जब मैं उसको रिकॉल करती हूँ बहुत बारी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान उसके बाद मिला, जब आज मैं उसको रिकॉल करती हूँ तो मुझे बहुत क्लैरिटी मिलती है, ये सारा का सारा थॉट का खेल था। जो हम कहते हैं पावर ऑफ थॉट्स, तो वास्तव में पावर ऑफ थॉट्स ही वर्क करती है और कुछ वर्क नहीं करता है। और पावर ऑफ थॉट जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होता, अच्छा हो अच्छा हो अच्छा हो, इसको पावर ऑफ थॉट नहीं कहा जाता है। पावर ऑफ थॉट जो है वो आपका बहुत सबकॉन्शियस माइंड कहता है होगा ही अच्छा, मुझे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको कहते पावर ऑफ थॉट। पावर ऑफ थॉट कहता है कि अभी जो भी फेस दिख रहा है आगे अच्छा ही होना है, जो हो रहा है मेरे साथ अच्छा हो रहा है, उसमें 1% भी डाउट नहीं। मैं समझती हूँ वो है पावर ऑफ थॉट, जो कि बहुत डीप होता है, जिसको आपको थॉट चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अंदर बैठा ही रहता है हर समय। तो वो जो कमाल किया है, वो जो सक्सेस हमको मिली उस समय, तो अब मुझे बहुत क्लैरिटी मिलती है, वो सक्सेस सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ थॉट की थी, जो बहुत अंदर बैठा हुआ था अच्छा ही होना है, अभी जो भी फेस दिख रहा है ये बहुत टेम्प्ररी है। तो इस प्रकार से उस पे विश्वास और खुद पे विश्वास, यही मैजिक करता, बाकी कुछ और मैजिक नहीं कर सकता। ओम शांति।
माना जितना अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, वो थॉट्स हमारे लिए हेल्पफुल बन जाएंगे, और वो ताकत, वो परमात्मा हमें अच्छा सोचने की ताकत देता है। सोनिका बहन ने बहुत सुंदर बताया। अभी लास्ट एकदम शॉर्ट में हम डॉक्टर साहब, राहुल साहब से सुनना चाहेंगे। आप हमारे ये सभी बच्चे हैं, उनको ये लाइफस्टाइल विथ वैल्यूज के लिए एक्सपर्ट टिप्स आप थोड़ी देंगे, ताकि इनको आगे चल के जीवन में जो चैलेंजेस आने वाली है उससे डरे नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी समझकर आगे बढ़े। तो आप अपना टिप्स हमें सबको देंगे।
जो चुनौती होती है वो जब तक ही चुनौती है जब तक आप में पावर नहीं है। जब आपके अंदर शक्ति आती है, पावर आती है, तभी आप उस चुनौतियों को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे भ्राता ललित ने बताया था कि चुनौती एक रिलेटिव वर्ड है, और जब आप में पावर आती है तो वो चुनौती भी आपको बहुत छोटी लगती है। तो इस राजयोग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, पावर यानी कि जो हमारा जनरेटर है, जो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है, वो ऑलमाइटी गॉड है, तो बाबा है। तो अगर आप अपना कनेक्शन, जैसे मोबाइल में आप चार्जर लगाते हैं, 100% बैटरी होती है, डिस्चार्ज हो जाती है, किसी की 3 घंटे में, किसी की 12 घंटे में, तो आप अपने मोबाइल फोन की, अपनी चार्जर को जो सीधे डायरेक्ट जो अल्टीमेट सोर्स है बाबा से, उसमें आप लगाएं, तो आपकी कभी भी बैटरी डाउन नहीं होगी। और आपके जितने भी चैलेंजेस हैं वो आपको ऐसे लगेंगे कि ये छोटे से कण हैं, मैं कभी भी इनको उड़ा सकता हूं, इनको ओवरकम कर सकता हूं। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। अभी रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले का है, यहां गुरु शिखर है, तो हम सब लोग जो है अपनी टीम के साथ गुरु शिखर घूमने गए थे। तो वहां जाके देखा कि 350 सीढ़ियां हैं, तो एक बार तो लगा कि मैं शायद चढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन यहां पे मैं आया, यहां पे मैंने मेडिटेशन किया, फिर मैंने कहा चलो करते हैं, जहां तक पहुंचेंगे वहां तक पहुंचेंगे, वहीं बैठ जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे चढ़ना शुरू किया, और मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं ऊपर तक गया, पहुंचा। और ये बाबा की शक्ति का ही कमाल है कि मैंने अपनी एनर्जी को उस एनर्जी से कनेक्ट किया, और वहां से एनर्जी डायरेक्टली मैंने उस मेडिटेशन के माध्यम से ली, और मैं ऊपर तक वहां तक गया। जबकि मेरे बहन है वो नीचे ही बैठ गई कि सर आप जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी ऊर्जा के स्रोत को केवल एक मोबाइल बैटरी की तरह ना रखें, जो आपको हर डेली रिचार्ज करना पड़े। आप सीधे कनेक्ट करें बाबा से, जो अल्टीमेट सोर्स है पावर का। तो कोई भी आपके चैलेंजेस आएंगे, जब भी आएंगे एक्स वाई जेड, वो सब आप उसको ओवरकम हंसते खेलते करते चले जाएंगे। थैंक यू।
भाई जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ललित भाई जी,
2 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा कि जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी, और जो यहां हम प्रैक्टिकल में करते हैं। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, जो अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। जैसे सर ने बताया अभी, हमको अपने आप को इम्पावर करना है, परिस्थितियां सब गौण हो जाएगी, और वो इम्पावर करने का सोर्स सुप्रीम पावर, उसके साथ कनेक्ट होके हम इम्पावर करें, सभी परिस्थितियां अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगी। ओम शांति।
बहुत सुंदर, तीनों महानुभावों ने अपने अपने सुंदर ख्याल रखे, हमें मोटिवेट किया, इंस्पायर किया अपने अनुभवों के आधार पे। हम तीनों ही महानुभावों का बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप सबको बहुत प्रेरणा मिली होगी, चैलेंजेस आएगी, लेकिन खुद पे भरोसा रख के और उस परमात्मा के साथ जुड़कर फेथ रखकर उसके ऊपर हम ओवरकम अवश्य करेंगे। अभी इसी के साथ हम ये सेशन खत्म कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सुंदर मेडिटेशन, क्रिएटिव मेडिटेशन होने जा रहा है, तो 2 मिनट हम उस पिता परमात्मा के साथ जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ओम शांति।